लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है वेनिस में पोप फ्रांसिस की एक दिवसीय प्रेरित यात्रा पर संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का एवं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। पोप फ्रांसिस ने रविवार 28 अप्रैल को इटली के वेनिस में अपनी एक दिवसीय प्रेरित यात्रा संपन्न की। प्रेरित यात्रा की विषय वस्तु थी मसीह के प्रेम में एक बने रहें। पर्यटकों से भरे पानी के ऊपर बने इटली के अति मनमोहक शहर वेनिस में पोप फ्रांसिस ने आज अपनी एक दिवसीय प्रेरित यात्रा संपन्न की। रविवार 28 अप्रैल की इस यात्रा के लिए पोप फ्रांसिस सुबह 6:30 बजे वैटिकन से हेलीकॉप्टर के द्वारा वेनिस पहुंचे। प्रेरित यात्रा का पहला पड़ाव था महिला प्रायश्चित केंद्र वेनिस जुदे का महिला जेल। पोप ने जुदे का कैद खाने में 80 से अधिक कैदियों, साथ ही जेल कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों से मुलाकात की। उन्होंने उन सभी की बात ध्यान से सुनी और अपनी यात्रा में उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने महिला कैदियों और जेल के सभी कर्मचारियों को संबोधित कर कहा, प्रिय बहनों और भाइयों सुप्रभात, मैं आप सभी का विशेष रूप से जुदे का महिला जेल में बंद आप बहनों का स्नेहपूर्वक अभिवादन करता हूँ। मैं अपनी वेनिस यात्रा की शुरुआत में आपसे मिलकर यह बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए एक विशेष स्थान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस क्षण को पोप की आधिकारिक यात्रा के रूप में नहीं बल्कि एक मुलाकात के रूप में अनुभव करें, जिसमें ईश्वर को धन्यवाद देना, एक दूसरे को समय देना, प्रार्थना करना, निकटता और भाईचारापूर्ण स्नेह महसूस करना संभव हो। आज हम सभी इस प्रांगण को और अधिक समृद्ध बनाकर छोड़ेंगे और जो अच्छाई हम एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे वह बहुमूल्य होगा। प्रभु चाहते हैं कि हम इस समय को एक साथ बिताएं। संत पापा ने कहा कि जेल एक कड़वी सच्चाई है जहां भीड़भाड़, सुविधाओं और संसाधनों की कमी एवं हिंसक घटनाएं जैसी समस्याएं बहुत अधिक पीड़ा को जन्म देती हैं। लेकिन यह नैतिक और भौतिक पुनर्जन्म का स्थान भी बन सकती हैं, जहां महिलाओं और पुरुषों की गरिमा को अलग थलग नहीं किया जाता बल्कि पारस्परिक सम्मान और प्रतिभाओं एवं क्षमताओं के पोषण के माध्यम से बढ़ाया जाता है जो शायद निष्क्रिय एवं बंद पड़े हैं। संत पापा ने कहा, अतः विरोधाभास के रूप में जेल में रहना कोई नई शुरुआत हो सकती है, एक दूसरे में संदेह रहे सुंदरता की पुनः खोज के माध्यम से, जैसा कि आप इस कलात्मक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं और जिस परियोजना में आप सक्रिय सहयोग देते हैं। यह पुनर्निर्माण के लिए एक निर्माण स्थल बन सकता है जिसमें साहसपूर्वक अपने जीवन को देखना और उसका मूल्यांकन करना है। जो आवश्यक नहीं है, जो अव्यवस्थित, हानिकारक या खतरनाक है, उसे हटाना, एक योजना बनाना और फिर नींव खोदना, फिर से शुरू करना और वापस जाना, अनुभव के प्रकाश में ईंट पर ईंट रखने के लिए एक साथ और दृढ़ संकल्प के साथ। संत पापा ने जेल प्रबंधकों से कहा, इसलिए जेल प्रणाली के लिए भी यह मौलिक है कि वह बंदियों को मानवीय, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक विकास के लिए उपकरण एवं स्थान प्रदान करे जिससे उनके स्वास्थ्य एवं पुनः एकीकरण के लिए परिस्थितियां तैयार हों। उनकी प्रतिष्ठा को अलग करने के लिए नहीं बल्कि नई संभावनाओं को देने के लिए। संत पापा ने सभी को याद दिलाते हुए कहा, आइए हम ना भूलें कि हम सभी ने गलतियां की हैं जिसके लिए माफी पाना है। हम सभी के घाव हैं जिनको चंगा किया जाना है, ताकि हम सभी चंगे होकर दूसरों के लिए चंगाई लाने वाले बन सकें, क्षमा प्राप्त कर दूसरों के लिए माफी ला सकें, नया जन्म पाकर दूसरों के लिए भी नया जन्म ला सकें। पोप ने आशा बनाए रखने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, आइए आज हम और आप मिलकर भविष्य में अपने विश्वास को नवीकृत करें। हम प्रत्येक दिन की शुरुआत यह कहकर करें, अभी उपयुक्त समय है, आज कल्याण का दिन है। और अपने संदेश के अंत में संत पापा ने सभी महिलाओं एवं जेल प्रबंधकों को मुलाकात के लिए धन्यवाद दिया तथा अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हुए अपने लिए प्रार्थना का आग्रह किया। जेल से प्रस्थान करने से पहले पोप ने कैदियों को माता मरियम एवं बालक येसु की एक प्रतिमा भेंट की और बतलाया कि वे इसमें एक माता की कोमलता देख सकते हैं। यही कोमलता माता मरियम हम सभी के साथ रखती हैं, क्योंकि वे कोमलता की जननी हैं। अंत में सभी कैदियों ने पोप से हाथ मिलाया और उनकी यात्रा के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने पोप को साबुन, कपड़े और फूल भेंट किए, जिनको वे जेल संचालित सहकारी समिति में काम करते हुए बनाते हैं। महिला कैदियों से मुलाकात करने के बाद पोप फ्रांसिस जेल के मगदलेना प्रार्थनालय गए, जहां उनकी मुलाकात वेनिस विनाइल के शिल्पकारों से हुई। वेनिस विनाइल एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनी है, जो विनाइल फाउंडेशन द्वारा इटली के वेनिस में प्रतिवर्ष दो बार आयोजित की जाती है। इससे 1895 से ही हर साल आयोजित किया जाता है। वेनिस कला विनाइल के मंडप में परमधम पीठ की ओर से प्रदर्शन कर रहे शिल्पकारों को धन्यवाद देते हुए पोप ने कहा, दुनिया को शिल्पकारों की जरूरत है। उन्होंने कहा, आपके पास मैं अजनबी जैसा महसूस नहीं करता, मुझे घर जैसा लगता है। मुझे लगता है कि वास्तव में यह हर इंसान पर लागू होता है, क्योंकि कला को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए शरण के शहर का दर्जा प्राप्त है, एक ऐसा शहर जो सभी को परिचित, शामिल, सुरक्षित और गले लगाने में सक्षम बनाने के लिए हिंसा एवं भेदभाव की उपेक्षा करता है। यह याद करते हुए कि पुराने नियम में अपराधियों को शरण देने और उनके मामले की सुनवाई होने तक बदला लेने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरण के शहर की स्थापना की गई थी, पोप फ्रांसिस ने शिल्पकारों को उन शहरों की कल्पना करने के लिए आमंत्रित किया जो अभी मानचित्रों में मौजूद नहीं हैं और जहां किसी भी इंसान को अजनबी नहीं समझा जाता है। पोप ने कहा, यह महत्वपूर्ण होगा यदि विभिन्न कलात्मक प्रथाएं शरण के शहरों के नेटवर्क के रूप में हर जगह स्थापित होंगे, जो दुनिया को उन अर्थहीन और खोखले विरोधाभासों से छुटकारा दिलाने में सहयोग करेंगे, जो नस्लवाद, विदेशियों से भेदभाव, असमानता, पारिस्थितिक असंतुलन और गरीबों के प्रति डर को जमीन हासिल कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इन विरोधाभासों के पीछे हमेशा दूसरों को अस्वीकार करना है। यह स्वार्थ है जो हमें सहयोगियों के द्वीप समूह के बजाय एकांत द्वीप के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इसके बाद संत पापा ने वेनिस के आर्ट विनाइल में वैटिकन के मंडप के लिए चुने गए शीर्षक मेरी आंखों से पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हम सभी को देखने की जरूरत है और खुद को देखने का साहस करने की जरूरत। हम येसु में ऐसा करना सीखते हैं। वे हर किसी को प्यार की नजरों से देखते और न्याय नहीं करते, लेकिन जानते हैं कि कैसे करीब रहना है और प्रोत्साहन देना है। पोप ने गौर किया कि कला हमें इसी नजरिए से देखने की सीख देती है। यह नजरिया अपने वश में करना अथवा वस्तु के रूप में देखना नहीं है और न ही उदासीन या सतही होना है, बल्कि यह हमें चिंतनात्मक नजर रखना सिखाती है। शिल्पकार दुनिया के हिस्से हैं, लेकिन वे इससे परे जाने के लिए बुलाए जाते हैं। अपने संबोधन को समाप्त करते हुए पोप फ्रांसिस ने आशा व्यक्त की कि समकालीन कला में मानवता में महिलाओं के योगदान को महत्व देने में मदद मिलेगी। उन्होंने फ्रीडा खालो, सिस्टर मैरी कोरिता केंट और लुइस बुजुर्वा जैसे प्रसिद्ध महिला शिल्पकारों का हवाला देते हुए कहा, खुशियां और पीड़ाएं अनूठे रूप में नारीत्व में एक होती हैं और जिन्हें हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पास हमें सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संत पापा ने अपने संदेश का समापन उपस्थित लोगों को यह निमंत्रण देते हुए किया कि वे उस सवाल को अपने दिल में सुने जिसको येसु ने योहान बपतिस्ता के संबंध में भीड़ से कहा था, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते सरकंडे को आखिर तुम क्या देखने गए थे? संत पापा ने कहा कि ये सवाल हमें भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं।
संत पापा फ्रांसिस ने वेनिस की अपनी एक दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के दौरान अच्छे स्वास्थ्य के संत मरियम महागिरजा घर के प्रांगण में युवाओं से भेंट की। संत पापा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आपसे मिलना कितना आश्चर्यजनक है। वास्तव में हम सबों ने एक महान उपहार को पाया है जो हमें ईश्वर की संतान बनाता है। यही कारण है कि हम सभी आज यहाँ हैं, ईश्वर में अपनी उस सुंदरता को खोजने और उसके नाम में आनंदित होने के लिए। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मित्रों, वेनिस के इस सुंदर शहर में हम मिलन के एक सुंदर क्षण को जीते हैं। संत पापा ने इस संदर्भ में दो प्रायोगिक और भौतिक क्रियाओं का जिक्र किया, दो क्रियाएं जो ईश्वर की माता और हमारी माँ युवा हृदय मरियम की गतिशीलता की ओर इंगित कराती है। ईश्वर की खुशी को साझा करने और जरूरत में पड़े लोगों की सहायता हेतु वे उठती और चल पड़ती हैं। उठना और चलना पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा,
perché siamo fatti per il cielo, alzarsi delle tristezze per trovare lo sguardo alto.
हम जमीन से उठें क्योंकि हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। हम अपनी उदासी से उठें और अपनी निगाहें ऊपर की ओर उठाएं। हम जीवन जीने के लिए उठें, ना कि आराम से बैठकर समय बिताएं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कोई युवा जीवन भर आरामदायक सोफे में बैठकर रह सकता है? आज बहुत सारी आराम की कुर्सियां हैं जहां से हम उठने में अपने को असमर्थ पाते हैं। उठने का अर्थ ईश्वर से यह कहना है कि मैं उपस्थित हूं, जो हम सबों पर विश्वास करते हैं। हम उठें जिससे हम अपने को उपहार स्वरूप देख सकें, क्योंकि हम किसी भी चीज से पहले अपने में मूल्यवान और अतुल्य हैं। अपने को पहचानना हमारे लिए पहला कदम लेना है। आप अपने बिछावन से बाहर निकलें और अपने को एक उपहार की तरह स्वीकारें। आप उठें और किसी चीज को शुरू करने के पहले ईश्वर का धन्यवाद करते हुए इस बात को पहचानें कि आप ईश्वर के एक उपहार हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा कि आप कह सकते हैं, मेरे ईश्वर जीवन के लिए धन्यवाद। मेरे ईश्वर मुझे अपने जीवन से प्रेम करना सिखा। मेरे ईश्वर तू मेरा जीवन है। इसके बाद आप हे पिता हमारे की प्रार्थना कह सकते हैं, जहां प्रथम शब्द पिता को हम खुशी के स्रोत स्वरूप पाते हैं। हम अपने को एक पुत्र और एक प्यारी पुत्री के रूप में पाते हैं। आप इस बात को याद करें कि आप कोई डिजिटल प्रोफाइल नहीं बल्कि ईश्वर की संतान हैं। हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में है, अतः हम सभी स्वर्ग की एक संतान हैं। उठने के लिए हम यह ना भूलें, संत पापा ने कहा, कि हमें सबसे पहले अपने को उठाने देने की आवश्यकता है। हम ईश्वर को अपना हाथ पकड़कर आगे ले जाने दें, क्योंकि वे हमें कभी निराश नहीं करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। हम कह सकते हैं, मैं अपने में कमजोर हूँ, क्षण भंगुर हूँ, मैं पापी बहुधा गिर जाता हूँ। जब आप इसका अनुभव करते हैं तो कृपया अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास करें। आप अपने को अपनी आंखों से नहीं बल्कि ईश्वर की निगाहों से देखें। जब आप एक गलती करते और गिर जाते हैं तो वे आपके संग कैसे पेश आते हैं? वे सदैव आपको उठाते हैं। इस संदर्भ में संत पापा ने एक सलाह देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को नीचे दृष्टि से देखना अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम उसे सहायता की दृष्टिकोण से ऐसा करते तो यह हमारे लिए उचित है। जब हम गिर जाते तो यीशु हमें उठाने के लिए ऐसा ही करते हैं। यह अपने में कितना सुंदर है! क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? हम सुसमाचार खोलकर इस बात को देख सकते हैं कि उन्होंने पेत्रुस के साथ मगदलीना, जकेयुस और अन्यों से क्या किया। वे उनकी कमजोरी में चमत्कार करते हैं। ईश्वर जानते हैं कि सुंदर होने के अलावे हम अपने में कमजोर हैं, और ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं। यह वेनिस के समान है जो अपने में अद्वितीय और साथ ही कोमल है।
Dio non si lega al dito di nostri errori. Hai fatto così, hai fatto. Lui non si lega a questo,
ईश्वर हमारी गलतियों को हमारे विरुद्ध पकड़कर नहीं रखते हैं, बल्कि वे हमारे लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं। जब हम गिर जाते तो वे हमें ऊपर उठाते हैं, ना कि गलती करने वालों के रूप में सजा देते हैं। एक बार जब हम उठते तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हों, हम अपने में बने रहें, चाहे हमें बैठने का महसूस क्यों ना होता हो, हम ना छोड़ें या हताश ना हों। यह सहज नहीं है, लेकिन यही रहस्य है। हाँ, बड़ी उपलब्धियों का रहस्य अपने में निरंतर बने रहना है। यह सत्य है कि बहुत बार हमारी कमजोरियां हमें पीछे की ओर खींचती हैं, लेकिन निरंतरता हमें आगे बढ़ाती है। आज हम अतिशीघ्रता के मनोभाव, क्षणिक सुख की स्थिति में जीवन यापन करते हैं। इसके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ते हैं। खिलाड़ी, यहाँ तक कि कलाकार और वैज्ञानिक गण हमें इस बारे में बतलाते हैं, महान सफलता तुरंत या अतिशीघ्र नहीं मिलती है। यदि यह खेल, कला और संस्कृति के संदर्भ में सही है, तो यह हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीजों के लिए भी लागू होता है, जहां हम विश्वास और प्रेम को पाते हैं।
युवाओं से मुलाकात करने के उपरांत संत पापा कुछ युवा प्रतिनिधियों के साथ नाव पर सवार होकर संत मार्कुस महा के चक्र के प्रांगण आए, जहां उनका स्वागत वेनिस प्रांत के अध्यक्ष लुका जाया, वेनिस के प्रीफेक्ट डॉक्टर दार्को पेलोस और वेनिस के महापौर लुइजी ब्रुगनारो ने की। प्रांगण में करीब 10,500 लोग उपस्थित थे। उनका अभिवादन करने के बाद संत पापा ने संत मार्कुस महा के चक्र के प्रांगण में ख्रिस्त्याग अर्पित किया। मिस्सा के दौरान पोप फ्रांसिस ने हमारे आम घर की देखभाल, समावेश और मुलाकात की संस्कृति को बनाए रखने का आह्वान किया। इस आवश्यकता पर ध्यान देते हुए कि सुंदरता सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, उन्होंने कहा, वेनिस को सभी के लिए एक सुंदरता का प्रतीक कहा जाता है, भाईचारा और हमारे आम घर की देखभाल का प्रतीक। प्रेरित यात्रा के विषय वस्तु की याद करते हुए उन्होंने कहा, केवल ख्रिस्त में एकजुट रहकर ही हम सुसमाचार के फल को उस जगह पर ला सकते हैं जहां हम रहते हैं। न्याय और शांति के फल, एकजुटता और प्रेरित देखभाल के फल और मानवीय विरासत को सुरक्षित करने के लिए सावधानी पूर्वक की गई है। संत पापा ने उपस्थित विश्वासियों से कहा कि हमें अपने ख्रिस्त समुदायों, पड़ोस और शहरों को स्वागत योग्य, समावेशपूर्ण और मेहमानबाज स्थान बनाने की जरूरत है। पौत्री यूखरिस्ट के अंत में स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ करने के पूर्व संत पापा ने प्रेरित यात्रा के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने वेनिस के प्राधिधर्मदर्श फ्रांचेस्को मोरालिया, सभी सरकारी एवं पुलिस अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया। संत पापा ने माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा दुनिया भर के पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की, खासकर हैती के लोगों के लिए एवं यूक्रेनी, फिलिस्तीनी, इसराइली और रोहिंग्याई लोगों की याद की जो युद्ध और हिंसा से तबाह हैं। उन्होंने कहा, शांति के ईश्वर दिलों को प्रबुद्ध करे ताकि हर किसी में बातचीत और मेल मिलाप की इच्छा जागे। तत्पश्चात पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए एवं प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने महागिर जगर में प्रवेश किया और संत मार्कुस के पौत्र अवशेष को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस तरह अपनी प्रेरित यात्रा समाप्त किया। विगत वर्षों में कई संत पापाओं ने वेनिस की यात्रा की है। 1985 में संत पापा जॉन पोल द्वितीय और 2011 में पोप बेनेडिक्ट 16वें ने वेनिस की प्रेरित यात्रा की थी। संत पापा फ्रांसिस वेनिस में अपनी एक दिवसीय प्रेरित यात्रा समाप्त कर दोपहर करीब 2:30 बजे वैटिकन वापस लौटे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।